जनवरी मास का अनुभव, जब अभी 18 जनवरी आता है क्या होता है, दिल भर आता है ना बाबा के लिए, इतना प्यार इतना स्नेह जागृत होता है। वो स्नेह क्यों जागृत होता है, किस स्नेह क्यों जागृत होता है, क्योंकि बाबा ने जो बच्चों के लिए किया है, अपना सर्वस्व त्याग करके बाबा बच्चों के लिए, जो बच्चों को जो सींचा है, जो बल भरा है, तो उनको याद करके दिल भराता है। और गीत में भी बहुत शब्द बहुत अच्छे थे, ना ख्यालों में था ना ख्वाबों में था, आप मिलेंगे। भगवान जब मिला है, क्योंकि वो हमने सोचा भी नहीं था भगवान इस रूप में मिलेगा, और बहुत ही साधारण रूप में मिलकर के इतना हमें सशक्त करेंगे, इतना हमारी झोली भरेंगे, है ना। तो बाबा ने हमें चुना है, इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इतने करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें से मुट्ठी भर बहुत गिने चुने आत्माएं हैं जो बाबा ने चुना है। कुछ देखा होगा तो इसीलिए चुना है ना। और कल की मुरली में भी बहुत प्यार भरा बाबा ने। बाबा ने क्या बोला कल, हमेशा मुरलियों में बाबा कहते थे कि स्मृति से समर्थि आती है ना, स्मृति अवेयरनेस, अगर हमको याद है कि मैं कौन हूं, समय की याद, स्मृति और परमात्मा की स्मृति, ये स्मृति रहती है दिन भर तो समर्थि आती है, याद है तो शक्ति है, विस्मृत होते हैं तो निशक्त हो जाते हैं, तो स्मृति के आधार से समर्थि आती है ना। तो लेकिन कल बाबा ने कुछ और बोला, किसको याद है, किसको याद है, समर्थ स्मृति के जगह पर कुछ और बोला बाबा ने, किसके आधार से समर्थि आती है, स्नेह के आधार से, स्नेह के आधार से समर्थि आती है। तो स्मृति है तो उससे भी गहरा है स्नेह। स्मृति केवल याद है, ठीक है हम ब्राह्मण हैं या मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन गहरा स्नेह है, स्नेह बहुत गहरा है, तो उसमें भी समर्थि आती है, उससे भी, है ना। तो इसलिए वो स्नेह हमें गहरा करने की जरूरत है, और स्नेह, क्योंकि भक्ति मार्ग का स्नेह और ज्ञान मार्ग का स्नेह बहुत अलग अलग है। सर्व संबंधों में बाबा मिले हुए हैं, तो सर्व संबंधों का जो स्नेह है प्रैक्टिकली, वो हमें अनुभव करना है। केवल मैं ये सोचूं कि पर शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन स्नेह कहाँ है उसमें, है ना। चलते फिरते भी, कल स्पेशली सभी ने अनुभव किया होगा, जो ब्रह्मा बाबा है, एंजेलिक ब्रह्मा बाबा, आकारी रूप ब्रह्मा बाबा का सभी ने अनुभव किया, तो ये लगता है कि ब्रह्मा बाबा हमारे आसपास हैं। केवल ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन बाप दादा, ब्रह्मा बाबा के अशरीरी तन में शिव बाबा, है ना, बाप दादा हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है। तो ऐसे विजुलाइज अगर करते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अंगुली पकड़ करके हम जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय भी ये अनुभव सुनाते हैं ना। दो दिन पहले भी जब प्रकाशमणि दादी गए थे मधुबन, तो दो दिन पहले ब्रह्मा बाबा हमेशा उन दिनों में क्या करते थे, बच्चों की ये जो छोटी अंगुली है ना ब्रह्मा बाबा के, वो पकड़ते थे दादी, तो वो पकड़ करके फिर सारा मधुबन में दिखाया कहाँ कहाँ स्टॉक है, कहाँ कहाँ क्या चीज है, तो कैसे आगे चल करके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी बातें थी, मतलब ऐसे ही अनायास ही बाबा ने सब कुछ बता दिया था। मतलब उस समय क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में अंगुली पकड़ करके हर चीज। तो ऐसे ही हम भी जब बाबा के अंगुली पकड़े हैं, वहां भगवान और भगत का, भगवान और इस संबंध नहीं, लेकिन वहां पिता और बच्चे का संबंध है ना। तो केवल सोचना नहीं है लेकिन विजुलाइज करना है, बुद्धि के आधार से। बुद्धि, बुद्धि से हम देखते हैं ना, इसीलिए कहते हैं बुद्धि को तीसरी आंख। तीसरा अंग कौन सा है हमारा? बुद्धि है, है ना। बुद्धि जितना क्लियर है उतना हम विजुलाइजेशन भी बहुत क्लियरली कर सकते हैं। जैसे फिल्म देख रहे हैं, हर चित्र बहुत क्लियर दिखाई देता है फिल्म में, है ना, मूवीज में। तो ऐसे ही क्या, मैं अगर मैं सोचूं कि वतन, वतन का दृश्य मुझे देखना है, तो क्या मैं यहां बैठे बैठे खुली आंखों से क्या मैं वतन देख सकती हूँ? वतन में क्या देख सकते हैं? स्टार समूल वतन में है, ब्रह्मा बाबा है, मतलब जो भी है, जो भी हमारे देखना चाहते हैं, जो भी, तो वो क्लियरली ऐसे दुर्लभ नहीं, जैसे हेजीनेस नहीं, लेकिन क्लियरली जो पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा चित्र हमको दिखाई देता है। ये अभ्यास करना है, जितना हमारा विजुलाइजेशन क्लियर है उतना हमारा योग पावरफुल होगा। केवल सोचने, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग भी, मन से हम सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं मन से, लेकिन बुद्धि से विजुलाइजेशन, मन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को जब हम योग में यूज करते हैं तो फिर हमारा योग पावरफुल होता है। और दूसरी बात, योग को पावरफुल करने के लिए फीलिंग्स, फीलिंग हमें लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ठीक है बाबा है, लेकिन फीलिंग क्या है? वो पिता है, मैं बच्ची हूं, वो फीलिंग जितना गहरा होगा ना उतना गहरा अनुभव, तभी हम स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग नहीं तो लंबे काल हम योग नहीं कर सकते, ड्राइनेस आ जाता है। जहां प्यार है वहां लंबे काल हम बैठ सकते हैं ना, तो इसलिए फीलिंग को जागृत करना जरूरी है। और फीलिंग कहां, कब से, कहां से आएगा, कैसे आएगा? रिलेशनशिप, संबंध के बिना फीलिंग नहीं आ सकता। तो इसीलिए संडे की मुरली में भी बाबा ने बोला ना, संबंध, सर्व संबंधों से मुझे याद करो, संबंधों, संबंध जोड़ते जाएंगे फीलिंग भी जागृत होना शुरू होगा। तो इसीलिए स्नेह गहरा करना है, संबंधों के आधार से हमारा स्नेह मजबूत हो। और दूसरी बात बाबा ने कल की मुरली में क्या बोले, बहुत, मैंने पांच मेन पॉइंट्स मैंने निकाली है कल की मुरली से, जो हमें याद करनी है और वो अभ्यास करना है, धारणा में लानी है। और दूसरी बात बाबा ने जो कही थी, आपको क्या याद आ रहा है बताइए? हाँ, मन का टाइम टेबल। मन का टाइम टेबल क्यों बनाना है? कर्म योगी बनने के लिए। बैठे बैठे तो योग करते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो। कर्म करते समय हमें बाबा की याद रहे, क्योंकि क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है और भी नाजुक होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए मन का टाइम टेबल, मन का टाइम टेबल बनाना आता है? मन का टाइम टेबल बनाना आता है? हाँ, जैसे सुबह उठ करके सोचते हैं ना कि मुझे 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है। जैसे मीटिंग्स होता है ऑफिसेज में भी, तो टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे इससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, तो सारा दिन का जो फिजिकल दिनचर्या है वो बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मन की दिनचर्या, मन का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे? स्वमान लेना है, बहुत लंबा लिस्ट है स्वमान का, तो वो भी कर सकते हैं। 9 बजे से 10 बजे जब भी कुछ फ्री टाइम मिला तो मुझे ये याद रखना है कि ये स्वमान मेरा है, 10 से 11 बजे के बीच में तो ये स्वमान है, अपने कन्वीनियंट के आधार से जो भी, अगर आधा घंटा लेना है, 1 घंटा लेना है 2 घंटा, क्योंकि जब कर्म करते समय ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ये याद करने के लिए, लेकिन फिर भी तो ये 1 घंटे का कर सकते हैं या 2 घंटे का एक कर सकते हैं। और दूसरा मैं यूजुअली जो करती हूँ वो है मुरली, जो सुबह मुरली सुन लेते हैं, तो जो मेन पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं 5-6 पॉइंट्स मैंने लिख ली, और फिर एक एक पॉइंट जैसे 9 से 10 के बीच में मुझे इसके बारे में सोचना है, ये पॉइंट है। अगर मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी बिजी हो जाते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, मन के पीछे वो याद रहता है ये बाबा ने आज बताई है, और फिर नेक्स्ट आवर के लिए नेक्स्ट पॉइंट बाबा की जो भी पॉइंट है। तो एटलीस्ट ज्ञान का मनन चिंतन अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट बाबा की मुरली याद है, तो वो फिर धारणा में आ जाना शुरू हो जाता है, है ना। तो ये भी एक तरीका है मन का टाइम टेबल करने के लिए। और कई बार हम ये भी करते हैं, संबंधों को भी लेते हैं, बाबा कहते हैं संबंधों से याद करो, तो 7 संबंध है और हफ्ते के 7 दिन है, तो हर एक संबंध, एक एक मंडे ये संबंध, ट्यूसडे ये संबंध, वेडनेसडे ये संबंध, तो ये उस संबंध का अनुभव उस दिन मुझे गहराई से करना है। जैसे मंडे को मैंने ले लिया पिता, फिर ट्यूसडे को माँ, और फिर वेडनेसडे को टीचर, गुरुवार को सदगुरु, फ्राइडे को सखा या फिर स्वामी साजन फ्राइडे को, और फिर सैटरडे को सखा, संडे को धर्मराज। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बच्चे का रूप, बच्चा है ना, बाबा हमारा बच्चा है, मुरब्बी बच्चा है, बाबा ने संडे की मुरली में भी बोला बाबा को मुरब्बी बच्चा बनाओ, पहला बच्चा बनाओ, जो लायक बच्चा है। हाँ वो तो आप मिक्स कर रहे हो अभी, बताओ। सैटरडे को दोस्त हो गया ना, सैटरडे को दोस्त हो गया, फिर संडे को बच्चा। तो ये भी तरीका, अलग अलग तरीका है, पुरुषार्थ के अलग अलग तरीके अपनाते हैं तो एक वैरायटी आ जाता है, तो फिर वो आनंद हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम टेबल, क्योंकि कर्म योगी बनना है तो ये टाइम टेबल हमें बनानी है। और तीसरी बात जो बाबा ने कही थी, जन्मते ही बाबा ने वरदान दिया है सबको, मास्टर सर्वशक्तिमान, ये वरदान याद करना है। जब भी कोई काम करना मुश्किल होता है ना, जैसे मान लीजिए अमृत वेला उठना मुश्किल हो रहा है, लेकिन याद करना बाबा ने मुझे यहाँ क्या वरदान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं अपनी कर्मेंद्रियों का मास्टर हूं, राजा हूं, कर्मेंद्रियों को मैं जैसा चलाना चाहूं वैसे मैं चला सकती हूं, ये मेरा वरदान है। जब वरदान रूप में याद करते हैं तो वो मेहनत नहीं लगता, ऑटोमेटिकली वो शक्ति हमें महसूस होता है। तो इसलिए कभी भी कुछ काम करना मुश्किल लगता है तो ये हमेशा याद करें कि बाबा ने मुझे जन्मते ही ये वरदान दे दिया है, और ये वारिस है हम, बाबा ने ये भी बोला ना कल, वारिस है तो वर्षे के रूप में सब खजाना बाबा ने हमें दिया है, पूरा वर्षा लेना है, आधा वर्षा लेने ही लेना है, पूरा वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है तो क्या करना होगा। दूसरी बात बाबा ने बोला, तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। ये मुरली 2010 में, लेकिन अभी भी ये लागू होता है। अभी पुरुषार्थी का समय नहीं है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। परिस्थितियों को देख रहे हैं क्या हो रहा है, भले वैक्सीन आ रहा है लेकिन फिर भी कितना काम हो करेगा वो, और देशों के बीच में भी क्या, अलग अलग देशों का भी हाल हम देख रहे हैं, अमेरिका का हाल देख रहे हैं, यूरोप में जो हो रहा है वो देख रहे हैं, चाइना में हो रहा है, जो देशों के बीच का जो संबंध है वो भी बहुत नाजुक होता जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, और फिर भारत में गृह युद्ध होने की हर संभावनाएं नजर आ रही है, है ना। बहुत ऐसे नाजुक समय और भी आगे चल करके बहुत होने वाला है। तो अभी भी हम अलबेलापन करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी कब बनेंगे, है ना। तो समय को देखते हुए हमें अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने की जरूरत है, केवल पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। तो इसलिए बाबा ने कहा, तीन बात बाबा ने याद दिलाई, अचानक, एवर रेडी, और बहुत काल। बहुत काल जो भी होगा अचानक होगा, है ना, बोल के नहीं होगा कि ये होगा करके, तो अचानक होगा, और उसके लिए हमें एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनना, एवर रेडी किस बात में, एवर रेडी किस बात में रहना है, विनाश होगा उसके लिए एवर रेडी, या कोई भी कोई भी परिस्थिति, भले विनाश अभी हमारे सामने नहीं है, है ना, बाबा की याद के लिए, है ना। हाँ, कोई परिस्थितियां आती है, अगर अचानक आकर के किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ को हो गया तो ये अभी अचानक है ना, कोई भी परिस्थितियां आती है तो अचानक, तो उसके लिए मैं कितना, मैं आश्चर्य हो जाऊंगी या फिर ऐसा होगा तो फिर फेल हो गए ना, उसके लिए भी रेडी है। ऐसा आकर के अचानक ऐसे कैसे बोल दिया इसने, गुस्सा को जाए या आश्चर्य का चिन्ह भी आया, लग गया, माना फेल, है ना। फुल पास होना है तो फिर एवर रेडी, हर बात के लिए एवर रेडी, परिस्थितियों के लिए हम एवर रेडी, और पास होना है हर हाल में, हमें फुल पास होना है। कहीं भी आश्चर्य या क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लग गया तो भी फेल, है ना। तो इसीलिए एवर रेडी, पास होने के लिए, हर परिस्थिति में पास होना है, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है, है ना। और फिर बहुत काल, बहुत काल का अभ्यास बाबा क्यों कहते हैं, बहुत काल का अभ्यास क्यों कहते हैं बाबा, हाँ, अगर ये कह दे कि बाबा ठीक है ना, कल बाबा ये भी कहा कि बाबा समय आने पर हम परिवर्तन हो जाएंगे, बाबा आप निश्चिंत रहो, हम है ना कर लेंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखो, कहते ना बाबा हम कर लेंगे, भरोसा रखो हमारे ऊपर, हो जाएगा। उस समय क्या हम बैठ करके, एकाग्र होकर के बाबा को याद कर सकते हैं, परिस्थितियां आई है, इतनी तकलीफ आई है हमारे परिवार में, तो उस टाइम पे बैठ करके बाबा को याद करो। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो बाबा से कनेक्ट हम नहीं हो पाते हैं। शांत परिस्थितियों में ही मैं कनेक्ट नहीं हो रही हूं, तो फिर परिस्थितियां जब आएगी तो उस समय मैं कनेक्ट हो पाऊंगी बाबा के साथ, हरगिज नहीं। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास जब हम करेंगे तब जाकर के अंतिम समय के पेपर जो है उसमें हम पास हो सकते हैं। और अंतिम समय का पेपर कौन सा है, पेपर आउट है, पता है ये पेपर है, एग्जाम्स में, दूसरे कॉलेजेस और स्कूल्स में तो पेपर आउट नहीं होता है, है ना। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में लास्ट पेपर आउट है, लास्ट पेपर हमें पता है क्या होने वाला है, कौन सा है, नष्ट मोहा। और उस पर विजय कैसे बनेंगे, स्मृति लब्धा, है ना, स्मृति में रहे, स्मृति से समर्थी बोला ना बाबा ने, स्मृति से समर्थी, स्नेह से समर्थी। तो जितना हम स्मृति में रहेंगे, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, तो उतना हम नष्ट मोह बन सकते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि वैराग्य वृत्ति को लाओ। हाँ, वैराग्य अभी भी देख करके, दुनिया को देख करके अभी भी आकर्षण हो रहा है। कुछ दिन पहले जो भट्टियां लगातार चल रही है ना, अभी दो ग्रुप के पहले जो लोग आए थे, उसमें से एक भाई थे, यंगस्टर्स थे, यंगस्टर भाई था। उनको बहुत उमंग उत्साह होता है ना, ये करना है, वो करना है, ये देखना है, वो देखना है। तो वो भाई आकर के मुझे को पूछा कि समय ऐसा आ रहा है, बाबा ऐसा कहता है, लेकिन ना मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखने का बहुत शौक है कि मुझे वहां जाना है, भले या वहां जा नहीं पा रहा हूं अभी पैंडेमिक के कारण से, लेकिन समय जैसे समय ठीक हो जाएगा तो मुझे अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों पर जाकर के मुझे जगह देखनी है, बहुत शौक है, मैं वो कर सकता हूं, आप क्या कहेंगे? अभी समय है सब काम करने के लिए? आपके पास है टाइम अभी? बहुत लेट हो गया है ना। वो सभी जो दुनियावी शौक है ना, वो थोड़ा सा किनारा कर दे, है ना। जो बहुत ही जरूरी बात है, कमाना तो है ही है, जब तक जिएंगे तब तक तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, पैसा तो चाहिए, तो जरूरी है कमाना, ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो शौक है उसको जितना हो सके कट डाउन करें, जितना हो सके, क्योंकि अभी समय नहीं है इन सभी बातों के लिए। हाँ, काम के लिए ट्रैवल करना है, कुछ सेवा के लिए ट्रैवल करना है, वो अलग बात है, लेकिन साइट सीइंग के लिए ये करना है, वो सब अभी समय नहीं है। टाइम पास, अभी टाइम बहुत कम है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम को बहुत ही यूटिलाइज करना है ना। क्योंकि यज्ञ की भी परिस्थिति आप देख रहे हैं, बाबा जो आने का तरीका है वो भी बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, तो इसीलिए जो समय है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है ना। तो जब पांडव भवन में ओम शांति भवन बना, तो लोगों को कहना, तो बाबा तो इतना दूर स्टेज पे बैठ रहे हैं, तो इतना दूर है, माइक से बोलेंगे बाबा। मेडिटेशन हॉल में जब बाबा आते थे तो नीचे बैठते थे ना बाबा, तो ऐसे नजदीक नजदीक बाबा से बैठ करके बाबा से मिलते थे। तो ओम शांति भवन स्टेज पे बैठते थे बाबा, तो फिर लोगों को लगा बाबा बहुत दूर है बाबा। फिर जब डायमंड हॉल बना और ही दूर, और हॉल में बैठे हैं लेकिन स्क्रीन से देख रहे हैं बाबा को, पीछे पीछे जो बैठे हुए भाई बहन है तो स्क्रीन से ही देखेंगे। वो उलाना दे रहे थे, वो देते थे उस समय ओम शांति भवन में आते थे, कितना अच्छा था, अभी डायमंड हॉल में इतना दूर है, ये है। अभी वो समय भी गया, वो समय भी गया। अभी फिर पूरा साल दो मार्च से लेकर के दिसंबर तक ट्रैवलिंग ही नहीं, मधुबन नहीं आ सकते हैं। एटलीस्ट अभी आपको मौका मिला है आने के लिए, आगे चल करके वो भी मौका आएगा नहीं आएगा किसको पता, आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है उसके लिए, है ना। तो इसीलिए जो आने वाले नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा सीरियस होना है अपने पुरुषार्थ में, जितना बहुत जरूरी है वो काम करना है, लेकिन बाकी समय पूरा हम पुरुषार्थ में लगाएं। हाँ, वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति लाएं, ताकि हम आधार मूर्त है ना, पूरे विश्व के, पूरे कल्प के लिए हम ब्राह्मण आत्माएं आधार मूर्त है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम नहीं पुरुषार्थ करेंगे, हम नहीं परफेक्ट होंगे तो जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनको सकाश कौन देंगे, है ना, अपने लिए नहीं, एटलीस्ट दुनिया के लिए, तड़पती हुई आत्माओं के लिए हम सुधर जाएं, है ना। तो इसलिए सीरियसली ये बात लेनी है, ये प्रेरणा लेनी है मधुबन से, शक्ति लेनी है और अपने लिए प्लानिंग करना आगे जा करके, जो भी इस साल के लिए क्या करना है ये प्लानिंग करें। ठीक है, अगर कुछ प्रश्न उत्तर है तो आधा घंटा आप क्वेश्चन आंसर्स कर ले, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। किसको कुछ पूछना है तो यहाँ एक माइक रख देंगे। हाँ जी आइए। माइक में ही बोलेंगे ताकि फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो ऐसे ही पूछेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं आता है।
ओम शांति। दीदी मेरा एक सवाल है कि खाने की आसक्ति को कैसे निकाले, अगर कोई चीज बड़ी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, तो ज्ञान के हिसाब से तो पता है कि वो अंत में हमें याद नहीं आना चाहिए। वो गुपचुप का उदाहरण भी देते हैं, किसी माँ को माता को वो अंत में गुपचुप याद आया और अंत में बाहर से लाके उसको खिलाना पड़ा। तो सपोज मुझे स्वीट बड़ा अच्छा लगता है तो वो आसक्ति निकल नहीं रही है, पहले बाबा को सुना दिया, बता दिया, लेकिन
आसक्ति मन आपका क्या है, अगर है तो खा लेने का, अगर नहीं है तो नहीं खाने का।
हाँ,
ये नहीं है तो भी याद आता है,
नहीं अगर है तो एक्स्ट्रा खाने की मतलब थोड़ा ज्यादा चला जाता, मतलब इतना जरूरत नहीं है फिर भी मैं कंट्रोल तो करता हूँ, लेकिन स्वीट थोड़ा ज्यादा ही जाता रहे।
ठीक है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमारे सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। जब हम भोजन करते हैं ना, चाहे वो बीच बीच में कटोरी कुछ खाते हैं या कुछ भी हम मुख में डालते हैं, बाबा को याद करके शक्ति भर के जब हम खाते हैं ना, तो वो इतना क्रेविंग्स नहीं होगा। तो मतलब केवल कई लोगों को देखा है, चलो बाहर जो नॉन बी के भाई बहने हैं तो उनके बात अलग है, देखकर लेते हैं भोजन, टेबल पे बैठेंगे भी नहीं, खाना शुरू करते हैं जाते जाते टेबल तक। तो हमारा वो ये नहीं है, राइट। हमारा नियम है, क्या नियम है, भोजन लेंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, बाबा को याद करते हैं, फिर हम स्वीकार करते हैं, राइट। अगर हम जो भी कर्ण मुख में डालते हैं बाबा को याद करके आराम से खाते हैं, तो कम भोजन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिल जाता है। और दुनिया के लोग भी ये कहते हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, अगर हम कहीं जाना है मुझे 5 मिनट में भोजन पूरा करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम खाते हैं ना, तो वो जो टेस्ट बड्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो इसलिए ज्यादा खाना पड़ता है, ज्यादा खाना पड़ता है क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। तो भले पेट भरा है लेकिन जो जीभ है, जीभ रस, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तो इसलिए ज्यादा खाना पड़ता है। तो इसीलिए मेडिकली क्या कहते हैं, 36 टाइम्स चू करना है ना, 36 चबाना है। तो एटलीस्ट 36 बार नहीं चबा सकते, एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा आराम से चबा करके, तो ताकि पूरा सलाइवा मिक्स हो जाए, तब धीरे धीरे हम जब खाते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। कम भोजन में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि ब्रेन को, वो जो जीप के कारण से वो ब्रेन तक वो सिग्नल जा रहा है, ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, तो ब्रेन वो सेटिस्फाई हो रहा है। हम सेटिस्फाई, पेट सेटिस्फाई नहीं होता, हमको जीप को सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो ब्रेन कनेक्टेड है, ये बात। तो इसलिए एक तो आराम से खाना है, अच्छी तरह चबा के खाना है और बाबा की याद में खाना है, तो फिर हम अपने सेंसेस को, अपने कर्म इंद्रियों को हम कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी वो ऑन कर दीजिए।
ओम शांति। दीदी खाने से ही बात याद आई कि घर में कोई भी ज्ञान में नहीं है, बाकी चीजें बाजार से भी आती हैं, मन नहीं करता बिल्कुल भी खाने के लिए, लेकिन हर चीज को अवॉइड करो तो फिर वो बड़ा वैसे माहौल बन जाता है कि तुम्हारा ये क्या, तुम हर चीज में ये करते हो वो करते हो।
युगल भी ज्ञान में नहीं है।
हाँ युगल भी ज्ञान में नहीं है, लेकिन बाबा है ज्ञान में।
बाबा तो ज्ञान में है।
बाबा मतलब बाबा मेरे साथ है, उल्टा कह गया, बाबा मेरे साथ है, इसलिए मुझे और भी चीजों में बहुत फायदा हो रहा है कि जो संकल्प की शक्ति थी, जो संकल्प करते हैं कि मैं घर में कुछ फोटो भी नहीं लगा पाता था, लेकिन संकल्प आया कि बच्चे वहां चले जाओ तो सामने 100 गज का गीता पाठशाला खुल गया। अगर लौकिकता में देखो तो वो 1,00,000 रुपया किराया है वहां पर, बाबा ने फ्री में करा दिया। तो वो संकल्पों की शक्ति बहुत काम कर रही है। लेकिन यहाँ जो परिवार के साथ रहना और वो बाजार की चीजें आना, वो उनमें शामिल होना नहीं करो तो 24 घंटे का दूसरी बातें हो जाती हैं, और अगर करो तो फिर अपनी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती, उस स्थिति में क्या करें?
कोशिश करके बाजार की चीजें नहीं खाएं तो अच्छा है। अगर घर में जो भी बनते हैं बनता है, जल पले आपके धर्म पत्नी ने बनाया है, आपने युगल ने बनाई है, तो जितना हो सके घर में पका हुआ जो भी भोजन है वो खाने की कोशिश करे, क्योंकि घर में फिर भी ठीक है, बाहर बाजार से आई हुई चीज और ही थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि आप आपकी परिस्थिति अलग है। बाबा के जो श्रीमत है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग श्रीमत होता है, तो इनके लिए जो होता है तो वो जो ज्ञान में है सभी उनके लिए लागू नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए इनके लिए जो है बाबा यही कहते हैं कि बाबा को याद करके, दृष्टि दे करके, थोड़ा ज्यादा प्लेट को जब रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा याद करना बाबा को, उस कण में जो भी भोजन रखे हैं तो उसमें अच्छी तरह शक्ति भर के, बाबा की पवित्रता की शक्ति स्पेशली वो भर के, फिर बाबा की याद में रहते हुए भोजन करना। जितना हो सके घर में जो पकता है वही भोजन करे, जो बाबा के नियम है उस अनुसार अगर चलते हैं तो अच्छा है। ठीक है,
ओम शांति। दीदी दीदी आपने अभी बोला टाइम वेस्ट के लिए, तो अभी हमें कोविड के टाइम पर मेरे सास ससुर हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें आपने तीर्थ यात्रा नहीं कराई और अब समय ऐसा आ गया है तो अब आप करा भी नहीं पाओगे, तो वो बहुत फोर्स कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि अब हर जून जुलाई में जब बच्चों की छुट्टी होगी तो उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, तो ये क्या टाइम वेस्ट है?
नहीं, ये उनकी इच्छा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है।
पर हमारे तीर्थ नहीं है तो हमारे लिए टाइम वेस्ट है।
नहीं, आप उस रीति से नहीं देखना, उन आत्माओं को संतुष्ट करना भी आपकी ड्यूटी है,
तो इसे टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे।
टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, भले आप जाएंगे लेकिन फिर बाबा को याद करना, ठीक है? वो टाइम वेस्ट नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है और वो कुछ और चीजें तो मांग नहीं रहे, वो अच्छे ही अच्छा ही है। भक्ति मार्ग जो यात्रा कराते हैं तो वो भी
पहले छोटे थे तो बच्चे छोटे थे तो नहीं ले जा पाए, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो फिर फोर्स करते हैं कि नहीं अब चलो।
बाबा कहते हैं बैलेंस बना के चलना है ना।
हाँ जी,
तो उनको भी संतुष्ट करना है।
ओम शांति।
ओम शांति दीदी। इस भट्टी में आने का जो मुख्य एक कारण वही कि बाप समान बनना है, तो हमें मौका मिला तो सीखा भी बहुत भट्टी से, तो अंदर इच्छा भी है तीव्र। अब बाबा ने आधार भी बाप समान बनने का दृढ़ता ही है, और बाबा ने कैच भी कराया कि विवेक का खून नहीं करेंगे तो दृढ़ता आएगी। अब दिखता तो है पर दृढ़ता कहीं पे टूट जाती है, अब यहाँ पर तो बहुत सुंदर से बाबा का साथ था, लगा ही नहीं कि दूसरा संकल्प आया हो, पहले संकल्प में ही सब कर्मेंद्रिया कार्य कर रही, प्रवृत्ति में जाएंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा गाइड करें। ओम शांति।
बाबा ने जो वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान, ये बार बार ये विजुलाइज करें, जैसे ही उठते हैं, जब उठते हैं उठते ही ये वरदान याद करें और ये विजुलाइज करें, बाबा का जो हस्त है मेरे सिर पर है और बाबा ये वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। और एक बार नहीं, 5, 6, 10 बार ये अभ्यास करें कि बाबा मुझे ये वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जितना जितना मैं रिपीट करती हूँ, वो प्रैक्टिस करती हूँ, वो आत्मा में ग्रहण होना शुरू होता है, धारणा होना शुरू हो जाता है। तो इसके आधार से हम दृढ़ रह सकते हैं, क्योंकि बाबा का साथ है, शक्ति है, समर्थी है, तो फिर दृढ़ता बनी रहेगी। ठीक है, अपना प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे लिए लाभ है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, कहेंगे बाबा मिराकल कर दो, चमत्कार कर दो, चमत्कार तो होना नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं विधि से सिद्धि। अगर आपको सिद्धि पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे बाबा हाथ लगाए और कह दो कि मैं घुटनों का दर्द है, बाबा हाथ लगा दो मैं घुटनों का दर्द गायब हो जाए, होगा ऐसे? हमेशा के लिए हो जाए ऐसे है? हो जाता है? ये अभ्यास करना है, जितना अभ्यास, चमत्कार नहीं है, है ना, विधि से सिद्धि। हमेशा ये याद रखना, विधि से सिद्धि है ना। हाँ जी, नेक्स्ट किसको पूछना है? आपको? अच्छा ठीक है जी, आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं।
ओम शांति दीदी। दीदी मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी हम ज्ञान देने की सेवा करते, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, मुरली सुनाने भी जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा लगता है जो हम सुना रहे बाबा की बात वो तो हमने धारण की ही नहीं, हमारे में तो आई ही नहीं पूरी तरह से, तो हम वो कैसे सुनाए, मतलब सुनाए, क्योंकि एक तो ज्ञान का चिंतन है, बाबा का ज्ञान है, तो उस हिसाब से तो हम समझा देते कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन एक तरफ सोचते तो हमारी कथनी और करनी में तो बहुत अंतर।
अगर
है।
उसके लिए वेट करेंगे ना, हम जब संपन्न होंगे तब हम ज्ञान देंगे, तो आप दे नहीं पाएंगे, आप दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जितना हमारा मनन चिंतन चलता है, जितना हम बताते जाएंगे, खुद के लिए भी वो लाभ होगा। अगर भले सारा दिन नमन चिंतन नहीं चलता है, लेकिन फिर अगर टॉपिक दिया जाए आपको कि इस टॉपिक पर आपको क्लास कराना है, तो मनन चिंतन चलना तो लगेगा ना, चलना शुरू हो जाएगा। फिर वर्णन, ज्ञान वर्णन जब करना शुरू करेंगे तो खुद के लिए भी वो सीखना हो जाएगा, और सभी का लाभ तो है ही है, लेकिन खुद के सबसे पहले जो लाभ मिलेगा खुद के लिए लाभ है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोच, मेरे अंदर जब धारणा होगी तब जाकर के मैं सुनाऊं, ये कभी नहीं सोचना। सुनाते सुनाते हम संपन्न हो जाएंगे, है ना, ये एक हमारी जर्नी है। सुनाते सुनाते हमारे लिए भी पक्का हो जाएगा और दूसरों के लिए भी ये बात पक्का करा सकते हैं। तो इसीलिए सेवा करते चलना है किसी भी हालत में, भले मेरे अंदर नहीं है लेकिन वर्णन करना शुरू किया तो खुद के लिए लाभ मिलेगा, है ना, वेट नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। और कभी भी कोई सुनाता है तो उसको भी देख करके मजाक नहीं उड़ाना है, इसके अंदर तो है ही नहीं, ये तो वर्णन कर रहे हैं बताओ, तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं जितना ले सकूं, मैं जितना धारण कर सकूं, तो वो हमारे लिए लाभ है।
ओम शांति। दीदी घर में लड़का ना कभी कभी नॉन वेज बना लेता है, नॉन वेज खाता है वो, तो पहले तो बहुत खाता था किंतु ज्ञान में जब से मैं आई धीरे धीरे बहुत कम हो गया। तो फल का तो भोग लगाती हूँ बाबा को, लेकिन कभी बहुत दिल आता है ऐसा कि डेली डेली बाबा एक ही खाएगा, बेटा भी बोलती हूँ माँ भी बोलती हूँ डेली केले खिलाऊंगी सेब खिलाऊंगी, जब दिल नहीं मानता तो चूल्हे उल्हे को मार के कभी हलवा भोग बना देती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
जिस किचन में नॉनवेज बनता है उस किचन में कभी भी बाबा के लिए भोग नहीं बनाना है।
तो इसीलिए कभी कभी दिल मतलब बहुत ये होता तो मांस धो के पूरा बर्तन अलग से एक्स्ट्रा रख रखे हैं, लेकिन उस चूल्हे को यूज करती हूँ तो उसको धो मांज के, तो वो नहीं करना,
वो शुद्धि नहीं माना जाता है।
अलग से अगर बेसक चूल्हा हो
अगर
तो
आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं अगर खाना है तो मार्केट में होटल में जाकर के खाओ, इस किचन में नॉनवेज नहीं बनेगा। अगर ये नियम बना लो आप तो अगर उसको खाना है तो भले होटल में जाकर के खाएं। तो ये नियम बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शक्ति दिखानी पड़ेगी। आप माँ हो, शक्ति दिखा सकते हो अपने बच्चे को। आप नियम पे नहीं चलाओगे तो कौन चलाएगा?
मैं तो बोलती हूँ लेकिन
बोलना एक बात है, शक्ति दिखाना, डिसिप्लिन
उनको ना उसको थोड़ा बाहर से जैसे उनके मामा उमा है फोन में बोल लेते
हैं। भले उनको खाना है तो होटल में जाके खाएं, अपने किचन में नहीं बनेगा बस। या अगर स्ट्रिक्टनेस बने करेंगे तो फिर चलेगा, आपके लिए भी लाभ है, घर वालों के लिए भी बहुत एक सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है। अगर आप चाहे मतलब आप चाहते हो बाबा मेरी रक्षा करे, सुरक्षित रहे, तो ये करना बहुत जरूरी है। श्रीमत का पालन अगर नहीं करते हैं और हम एक्सपेक्ट करें बाबा मेरी सुरक्षा करें,
नहीं दीदी बाबा
तो वो नहीं हो पाएगा, मान के चलिए।
हाँ दीदी ये बात सही है, लेकिन है बाबा तो इतनी मदद करता है, मेरे तो आंख से आंसू भी निकलते हैं दीदी, जिस दिन हाँ, नहीं मानता।
तो इसीलिए जितना हो सके श्रीमत पे चलना है।
ठीक
है, हाँ छूट भी सकते हैं।
ओम शांति दीदी, मैं पूछ रही थी कि हम खाना तो खाते हैं, भोजन बाबा सामने रख करके और बाबा को याद करते हैं बाबा आओ खाना खा लो, लेकिन हम बाबा बोलते हैं कि बाबा आओ खाना खा लो फिर खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पूछना था कि कैसे पावरफुल याद करेंगे ताकि एकदम भोजन करें तो हमें संतुष्टि हो, बाबा को याद करने की थी।
थाली रख करके आगे एक बाबा के साथ कनेक्ट होना और बाबा से शक्ति लेकर के भोजन को शक्ति देना, बाबा की शक्ति, कोई भी जैसे पवित्रता की शक्ति, सर्वशक्तिमान के समान लेकर के शक्ति, या जो भी गुण या ऐसे लेकर के बाबा से वो किरणें लेकर के उसको भोजन को हमें शुद्ध करना है। क्योंकि वो दाना कहाँ उगा है, किसने उगाई है, शॉप से आया है, किसने वो बेचा है, तो वो सारा एनर्जी उसमें है, सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में है। सब्जी भी किस इससे आया, रूट से आया, पता नहीं ना। तो जब भले पकाते समय हम बाबा को याद करके पकाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भोजन करते समय भी हम उस कण को, हर पूरे भोजन को हम शक्ति भरे, बाबा की शक्ति भरे, पवित्रता की शक्ति भरे, तो फिर हम खाएं। ये है स्वीकार कराना, बाबा को बोलते कि आप स्वीकार, बाबा तो अभोक्ता है, खाना तो हमें ही है, लेकिन उसको पवित्र बना करके, शक्ति भर के भोजन, क्योंकि भोजन डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर जाता है, फिर डायरेक्टली अफेक्ट करता है मन को, तो इसीलिए भोजन के ऊपर थोड़ा ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। हाँ जी,
ओम शांति। रेसा खाने के बारे में पूछना था,
आज तो पूरा भोजन पर ही चल रहा है। ठीक है,
नॉन वेज तो खाते नहीं है, हाँ। लेकिन प्याज लहसुन तो घर में बच्ची बना देती है, तो लेकिन वही चूल्हे में खाना बना सकते हैं क्या बाबा की वो?
चूल्हा ठीक है, लेकिन हाँ। कढ़ाई उसमें नहीं
हो, हाँ, कढ़ाई अलग है, लेकिन चूल्हा ठीक है,
चूल्हा वहाँ ठीक है, लेकिन कढ़ाई अलग।
हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो अलग ही यूज करती हूँ, खाली इसके बारे में पूछना था, जैसा आपने नॉन वेज का बताया था ना, वो चूल्हा यूज नहीं करना है करके।
वो लड़की माना आपकी बेटी?
बेटी, बेटी बनाती है।
ज्ञान में नहीं है
वो? एक्चुअली कोर्स किया है लेकिन धारणा में नहीं है तो अभी
मैंने जितना स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि आप माँ हैं,
हाँ,
राइट,
हाँ,
आप घर में डिसिप्लिन आपका चलता है,
हाँ,
अगर मना कोई बहू होते हैं तो फिर वो माहौल अलग है,
अलग
तो फिर नहीं हो सकता,
हाँ,
लेकिन आप माँ हैं तो आप डिसिप्लिन ला सकते हैं घर में,
हाँ,
जितना
हाँ,
स्ट्रिक्टनेस अगर रहे
तो
धीरे धीरे छूट भी सकता है वो।
बहुत बार कोशिश किया लेकिन वो लोग नहीं, बिना कांदा लहसुन मना कम खाते हैं लेकिन खाते हैं वो। ठीक है, शुक्रिया। और एक प्रश्न पूछना था, वो जो मुरली सवेरे सुनती है ध्यान से सुनती है लेकिन बाद में पॉइंट्स उसका भूल ही जाते हैं, कभी रिकलेक्ट करते हैं तो भूल जाते हैं, तो उसका थोड़ा विधि बता सकते हैं आप?
नोट्स लिखते हैं आप?
नोट्स लिखती हूँ, नोट्स लिखती हूँ।
जैसे जब मुरली सुन रहे हैं आप नोट्स लिखते हैं?
लिखती हूँ हाँ।
तो लिखने के बाद भी याद क्यों नहीं रहता सर?
नहीं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं वापस उसको ही।
भले पूरा मुरली याद ना रहे, एटलीस्ट मेन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स अच्छी लगी, एटलीस्ट 5 से 10 पॉइंट्स अगर मुरली के मना याद रहा वो भी बहुत है।
अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिस करना,
करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको नोट्स निकाल करके पढ़ने की आदत डाली, रिवीजन करने की, मुरली रिवाइज। जैसे दादियों को देखते थे ना, प्रकाशमणि दादी स्पेशली दिन में 5 बार मुरली पढ़ते थे, 5 बार दादियां, है ना, तो वो अभ्यास। मुरली में रस है,
रस है,
मुरली में आनंद है, तो इसीलिए वो आदत डालनी।
ठीक है,
ओम शांति दीदी। दीदी जैसे बच्चे कभी नहीं सुनते हैं तो डांट के हम उनको बोलते हैं, तो क्या डांटना, उस वक्त गुस्सा करना, क्या ये क्रोध में और विकार में आता है?
ब्रह्मा बाबा क्या करते थे?
पनिश करते थे अलग तरीके से उनको, जैसे कि जो चीज़
बाबा पनिश नहीं करते थे। आपने जीवन कहानी सुनी है बाबा
हाँ,
की
हाँ।
बहुत फुसला करके, बहुत युक्ति से उनको, अगर बाबा मुरलियों में भी ये बाबा कहते हैं, अभी कोई बच्चे बहुत एक मिस्चीफस हो जाते हैं, बहुत ये करते हैं, तो फिर आप उनको डांटो नहीं, मारो नहीं। क्या करने के लिए श्रीमत है बाबा मुरलियों में क्या बोला है बाबा ने?
कि बहुत प्यार से उनको समझाइए।
नहीं, बांध सकते हैं आप।
अच्छा हाँ,
आप उनको बांध सकते हैं,
पसंद की चीज उनको मत दो,
मत दो
हाँ।
तो ऐसे उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना है, अगर ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये करेगा तो ये होगा, तो ऐसे।
बट कभी कभी नहीं चलता है वो भी डांटना ही पड़ता है उनको, ठीक है मत दो, ऐसा हो जाता है, ठीक है नहीं करते हैं, उस वक्त फिर एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं, फिर वही हमको बोलते हैं क्यों ज्ञान में हो ना आप,
आपके लिए परीक्षा है,
हाँ,
है ना,
क्योंकि वो भी ज्ञान में है और वो फिर मुझे कहते हैं क्यों मम्मी आप ज्ञान में हो ना, बाबा ये बताते हैं तो फिर मैं
जानबूझ करके आपके टेस्ट ले रहे हैं वो बच्चे, है ना आपके,
कि फिर मैं मतलब सोचना पड़ जाती कि वाकई मुझे वहाँ पे डांटना चाहिए था, उनको टोकना चाहिए था या छोड़ देना था। बहुत बार मैंने ये भी कोशिश की, चलो छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है, करने देते हैं करने देते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट पे लगता है कि नहीं ज्यादा हो रहा है, अगर अब नहीं बोला तो शायद ये बात बिगड़ जाएगी, और फिर अगर उस वक्त बोला टोका थोड़ा
नहीं,
स्ट्रिक्ट
टोकना
तो
नहीं है, उनको बिठा करके प्यार से समझाने की जरूरत है, क्यों ये करने से क्या होगा, ये न करने से क्या होगा, तो क्योंकि बच्चे जितना प्यार से समझते है ना, डांट से और ही उल्टा हो जाएगा उनका, तो मम्मी चिढ़ने दो और चिढ़ाएंगे, है ना, और हो जाएगा, तो इसीलिए प्यार से उनको समझाने, मैं जैसे बड़ों को समझाते हैं ना, उनको ऐसे ट्रीट करिए कि देखो ये करने से, अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आए हैं आपके घर में लेकिन उनके सामने ये लोग उधम मचा रहे, इधर से कूद रहे उधर से कूद रहे, लेकिन पहले से उनको बताना है देखो ये करने से किसके रिस्पेक्ट कम हो जाता है, ये होता है, तो उनको थोड़ा सा उनकी भाषा में उनको समझाने की जरूरत है। और बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अटेंशन चाहिए उनको, अटेंशन चाहिए, तो पहले से उनको प्यार दे करके अटेंशन दे करके करते तो फिर वो ज्यादा ऐसा नहीं करते, तो आपके हाथ में है, आपके लिए टेस्ट है ये।
ओम शांति दीदी। दीदी जैसे जो ज्ञान में नहीं चलते लोग और वो हमें गिफ्ट देते हैं, तो फिर वो हमने नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, पर फिर भी वो देते ही हैं।
फंक्शंस में जाएंगे तो गिफ्ट देंगे।
फिर अब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके फादर हैं, वो गिफ्ट देते हैं, साड़ी देंगे, कुछ भी देंगे, तो फिर मुझे लेनी पड़ती है, पर मैं लेना नहीं चाहती, अंदर से मन नहीं मांगता।
तो कोई बात नहीं, उनकी भी दिल रखनी पड़ेगी ना,
तो रख लें।
कोई बात नहीं, कभी भी मना, फिर ऐसे आपके पास ज्ञान युक्त कुछ ऐसे चीज आती है तो फिर आप गिफ्ट रिटर्न में देना, लेकिन ज्ञान की कुछ ऐसे चीज
मतलब गिफ्ट रख सकते हैं, मुझे मतलब भार लगता है हमेशा से कि भाई मुझे,
लेकिन लेन देन तो चलता है ना, तो फिर आप भी रिटर्न में कुछ ना कुछ, कभी भी मौका मिले तो ऐसे गिफ्ट आप उनको भी दे सकते हैं। क्योंकि लौकिक परिवार में तो चलता है ना लेन देन, तो अगर नहीं लेंगे तो फिर उनको फील होता है। फिर
दीदी हमारे घर के सामने गीता पाठशाला चलती है, बाबा ने निमित्त बना रखा है, कई बार करता है मन के आज में सुनाऊ मुरली, लेकिन एक दो भाई जो कहते हैं ये श्रीमत नहीं है कि भाई मुरली सुनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जी हैं, तो ये फिर मेरे को हटाना पड़ा। लेकिन कई बार ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मन करता है कि जैसे संडे की अव्यक्त मुरली होती है, मैं जानता हूं मैं अच्छा करा सकता हूं और क्लास अच्छी हो सकती है, उस स्थिति में फिर वो श्रीमत क्या कहती है बाबा की?
मतलब कौन कराते हैं मुरली, कौन पढ़ते हैं?
बहने हैं,
बहने हैं ना, क्या समर्पित बहने, टीचर बहने?
समर्पित तो नहीं है, वो परवर्ती मार्ग की ही बहने,
माताएं
भी नहीं, बहने ही हैं, मतलब कम एज की हैं, ज्यादा एज की नहीं है,
कुमारियां हैं।
कुमारियां नहीं, कुमारियां भी नहीं, अर्ध कुमारियां, परवर्ती मार्ग परिवार में रहते हुए।
ओके ठीक है,
उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कभी कभी होता है मन के आज, और पहले जहां जिन जिन सेंटरों से कुंवर सिंह नगर से कनेक्टेड हूं, दीदी भी बोलती हैं कि आज आप क्लास करा देना, वहां मैं जाता भी हूं, फिर एक दिन एक भाई ने कही,
इसमें हम यहां इसमें कुछ नहीं बोल सकते, वहां लोकल सेंटर की जो बहन है ना, तो वो जैसे कहेंगे वैसे आपको करना है। लोकल आपके सेंटर की बहन दीदी है ना, वहां टीचर बहन, वो जैसे कहे वैसे कर सकते हैं आप, है ना? क्योंकि कुछ बातें जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो बाबा ने ये नियम बना कर दिया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए प्रोटोकॉल्स है, जैसे हेडक्वार्टर्स है, फिर सब जोन्स है, सब जोन है, सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इन सभी बातों को देखते हुए उनका सुनना पड़ेगा, है ना? जो पुरुषार्थ की बात है तो फिर मुरलियों में, मुरलियों की बात है, तो इसीलिए जो डायरेक्ट आप खुद की पुरुषार्थ है तो डायरेक्ट बाबा से मैं लिंक जोड़ सकती हूँ, खुद के लिए जो उन्नति की बात है, कोई समस्याएं हैं, खुद के लाइफ की समस्याएं हैं, तो मैं डायरेक्टली बाबा से श्रीमत ले सकती हूँ। अगर मेरा लिंक अच्छा है, टचिंग पावर मेरा बहुत अच्छा है, कैचिंग पावर मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं डायरेक्टली श्रीमद शिवाबा से, बाप दादा से ले सकती हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो वो हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। जैसे कि मधुबन आना है, आपको सेंटर के थ्रू ही आना है, ये नियम बना हुआ है ना? वो सेंटर कैसे चलेगा, वो ये नियम बना हुआ है, तो हम डायरेक्टली ये अगर मैं सोचू बाबा मुझे मधुबन जाना है, बाबा मुझे लगता है कि बाबा ने सिग्नल दे दी, मैं चली आऊं, ये नहीं चलता है ना? तो उसके लिए नियम अलग है, खुद के पुरुषार्थ के लिए मैं डायरेक्टली बाबा से जुड़ सकती हूँ, ठीक है? तो इस बात के लिए आपके जो सेंटर की दीदी बोलेंगी वही आप करेंगे, ठीक है? एक दो अभी प्रश्न ले लेंगे, कोई बहन उठे थे, फिर बाद में हम सभी पिकनिक के लिए जाएंगे। कोई उठे थे यहाँ अभी? हाँ जी, ऑन है, ऑन है।
दीदी ऐसे है कि मेरे घर में देखे मेरा बेटी जो है खाना पकाती है,
बहू जो है कि बाजू में रहती है तो वो भी कभी कभी आकर के उसमें हाथ बटाती है, तो क्या वो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते?
बेटी ज्ञान में है?
बेटी ज्ञान में भी है। बेटी जो है कि मेरा उसका हस्बैंड जो है कि एक्सपायर हो गया है,
पवित्र है।
हाँ, तो बहू भी कभी कभी आकर के उसमें हाथ बटाती है खाने के बनाने में, तो खाना खा सकते हैं ना?
ऐसा है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते वो आपके ऊपर है। आप नियम पता है राइट, जितना शुद्धि से संकल्प से भोजन बनाना है और खाना है, तो उसके फिर बाद में आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है।
ऐसा तो डेली तो बेटी बनाती है, वो कभी कभी आती है तो वो भी हाथ में लगा देती है।
प्यार से थोड़ा सा बोल सकते हैं ना उनको।
अच्छा,
मेन नियम तो पता है, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, फिर उसके बाद में कितना हम कर सकते हैं फिर हमारे ऊपर है।
ओम शांति दीदी, मुझे ज्ञान में आके कम से कम डेढ़ साल हो रहा है, डेढ़ दो साल हो रहे हैं, और जब भी ध्यान लगाता हूँ, ध्यान तो लग जाता है लेकिन पूरे बहुत सारे अकाउंट खुल जाते हैं,
बहुत सारे
अकाउंट खुल जाते हैं, मतलब ध्यान में बैठने के बाद ध्यान लगता है और फिर जो पुरानी यादें हैं,
यादें
हाँ, पुराने जो अकाउंट्स खुले हुए हैं तो सब अकाउंट्स याद आना चालू हो जाते हैं, फिर वो उसकी तरफ जाना है, फिर इधर लाना है, फिर उसको उधर डोमिनेट स्टॉप, लेकिन कभी कभी तो वो अकाउंट में ज्यादा घुस जाते हैं और ध्यान उधर ज्यादा लग जाता है, तो उससे कैसे कंट्रोल करें?
कौन सी घटनाएं ज्यादा याद आती है आपको?
जैसे कि किसी को
दुखद
दुखद घटना भी है,
दुखद या सुखद?
सुखद भी हो सकती है, सुखद भी कभी कभी याद आती है, कभी दुखद भी याद आती है, किसी के साथ झगड़ा हो तो वो भी याद आ जाता है, या कोई बुरा भला कह दे, कोई बोलता है कि अभी ये साधु बन गया, जैसे मेरे दोस्त जो है,
उसमें बुराई क्या है? हाँ बोल दीजिए ना, मैं साधु बन गया, उसमें बुराई क्या है?
तो फिर वो याद आता है, नहीं मैंने उसको, वो मेरे को साधु बोला तो मैं उसको कुछ ना कुछ बोलना मांगता था, वो ध्यान के टाइम ही याद आता है, वो टाइम नहीं याद आता है, वो टाइम उसको बोलने को नहीं दिल करता है, लेकिन जब ध्यान में बैठता हूँ तो फिर अरे उसने मेरे को बोला था साधु बन गया, तो उसको ये सुनाना पड़ता था, तो ध्यान से जरा हट जाता है ये कारणिक अकाउंट।
वो क्यों याद आता है? क्योंकि जब योग में बैठते हैं ना तो वो हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो शांत होने, मन शांत होने लगता है, तो फिर वो जो बातें हैं वो सारा उभरना शुरू हो जाता है। वो तो ठीक है, होता है, लेकिन जो भी चीज याद आई तो बाबा के सामने उसको रख दीजिए कि बाबा ये बात याद आ रही है, तो उस आत्मा को सकाश दीजिए जो भी है, तो वो क्योंकि हिसाब किताब है तो इसलिए याद आ रहा है ना, तो इसलिए सकाश दे करके फिर उसको वहां खत्म करना है, क्योंकि हिसाब किताब खत्म करना है ना। अभी लास्ट जन्म में हमारा मुख्य काम क्या है? हिसाब किताब चुक तो करना ही हमारा मुख्य काम है अभी, राइट? तो इसीलिए हिसाब किताब चुक तो करना ही पड़ेगा, तो करने के लिए हम जितना हम उन आत्माओं को सकाश देंगे, संसार को सकाश देते जाएंगे, उतना जल्दी हम हिसाब किताब से चुकतो होंगे। अगर सकाश ही नहीं देंगे तो हिसाब किताब चुकतो करने होगा ही नहीं, ये मान के चलिए। तो इसलिए देने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसका है? हम ब्राह्मणों का ही है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब, ज्यादा जन्म हमने लिया है, 63 जन्मों का हिसाब किताब हमारे माथे पर है। हाँ 63 साल में देखिए, तो इसलिए जल्दी अगर हिसाब किताब चुकतो करना है, एकमात्र उपाय है सकाश देना। सकाश दिए बिना हम चुकतो नहीं कर सकते हिसाब किताब, है ना? ठीक है, ओम शांति। जल्दी है पिकनिक जाने में, बताओ। ठीक है, चलिए बाबा की याद में बैठते हैं, फिर सभी दादी जान के पार्क में चलते हैं, अच्छा पिकनिक कर लेते हैं।